ایک آیت کے بعد دوبارہ ہمیں میدان احد کی کچھ جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور اس آیت کو پڑھتے اور سنتے وقت آپ تصور میں لائیں گے کیا وہی چیز جو کہ غزوہ احد کا شروع کا حصہ تھا. دیکھیے غزوہ احد جو تھی نا وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ابتدائی حصہ اور ایک انتہائی. اب اسے اگلی کچھ آیتوں میں ہم شروع کے اور آخر کے حصے کو دیکھیں گے. آیت 152 میں میدان جنگ کا بالکل ابتدائی منظر ہے. کیا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے سچ ثابت کر دیا اپنا وعدہ، اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دیا. کیا کیسے؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے. ہا سین سین اس کا روٹ ہے، یعنی کسی کو کاٹنا، کاٹنے سے مراد جیسے قتل و غارت گری کی طرف اشارہ ہے اس میں، کٹ ڈاؤن کے معنوں میں، جیسے کوئی گوشت کاٹتا ہے یا سبزی کاٹتا ہے، یعنی تم اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے. ہم کون ہے ادھر؟ وہ کفار جو میدان احد میں آ چکے تھے. تحسون میں تم مسلمان. اللہ تعالیٰ میدان احد کا اول حصہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جس میں تم کافروں کو کاٹ رہے تھے، یعنی تمہاری تلواریں تھیں اور ان کی گردنیں تھیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ تم نے میدان مار لیا. بس اتنا سا جملہ ہے. اور ہم پیچھے بات کر چکے کہ غزوہ احد کے ابتدا میں مسلمان بے جگری سے لڑے تھے، اور بہت زیادہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں فتح دی، عزت دی، اور کفار کے دل پہ مسلمانوں کا روب اتنا زیادہ طاری ہو گیا کہ اس کے بعد پھر مسلمان جو تھے وہ جیت گئے، اور بہت زیادہ اس میں ان کو فائدہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ. یہ حتیٰ سے دوسرا سین شروع ہو رہا ہے. پہلا حصہ تھا شروع کا، جس میں ابھی مسلمان اللہ کے نبی کے حکم کو مانتے ہوئے درے پہ موجود تھے، بات جو تھی وہ ویسے ہی تھی جیسی حکم دی گئی تھی، انسٹرکشنز کو فالو کیا جا رہا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ جنگ بظاہر ختم ہوتی دیکھی. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور کاموں میں یعنی کام میں جھگڑا ڈال دیا، وعصیتم من بعد ما اراکم، اور نافرمانی میں پڑ گئے اس چیز کے بعد جو تم کو دکھا دی گئی. ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کو چاہتے تھے. ومنکم من یرید الاخرہ، اور بعض وہ تھے جو آخرت کو چاہتے تھے. پھر کیا ہوا؟ ثم صرفکم عنہم، پھر تم کو پلٹا دیا ان سے. کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے. ولقد عفا عنکم، اور اس نے تم کو معاف کر دیا. کیونکہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے میدان احد کے دو مختلف منظر پیش کیے. ابتدائی حصے میں مسلمانوں کی فتح کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان لڑے اور بہت بے جگری سے لڑے، نتیجہ کیا ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے میدان مار لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم لڑے اللہ نے وعدہ پورا کیا. یہ کون سے وعدے کی بات ہے؟ صدقکم اللہ وعدہ، یہ وہی وعدہ ہے جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تم پر 3 یا 5 ہزار فرشتے بھیجوں گا. اگر وہ بدر سے متعلق ہے تو مراد کیا ہے کہ اللہ کی ذات کا وعدہ کیا کہ جو جم کے لڑے گا فتح و نصرت اسی کو ہوگی. کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ بہت جگہ آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو اللہ نے بھی مدد کر دی. جب تک تم نے اللہ کا حکم مانا، نبی کے حکم کو مانا، جو ہدایات دی گئی تھی اس کو مانا، بزدلی نہیں دکھائی، اللہ نے فتح دے دی. حالانکہ اس وقت بھی کفار تمہارے سامنے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن تمہیں اللہ نے فتح دی. پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، تم نے نامردی کی، مراد کیا ہے کہ تم پیچھے ہٹ گئے. پیچھے بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ جب مسلمانوں کو برے پہ رہنے کا حکم دیا گیا، اور برا بن عازب کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، کہتے ہیں کہ احد کے دن جب ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا تو اللہ کے نبی نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں درے پر مقرر کیا، اور انہیں حکم دیا کہ چاہے ہمیں فتح ہو या शिकस्त हो, तुम किसी सूरत इस जगह को न छोड़ना। तुम देखो कि परिंदे हमारी बोटियां नोच रहे हैं, फिर भी तुम अपनी इस जगह को न छोड़ना। इस बात पे अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की इस बात पे सहाबे कराम को वहां फतह दी थी जब तक उन्होंने अमल किया, लेकिन जू ही हुक्म छोड़ा, बदर्रा छोड़ दिया, नीचे आके माल जमा करने लगे तो नामर्दी आ गई, सुस्ती आई। वह तनाजा तुम फिल अमरी, काम में झगड़ा हुआ। ये कौन सा तनाजा था उस वक्त? ये वही तनाजा था, कुछ ने कहा कि इधर ही खड़े रहो, अभी जंग खत्म नहीं हुई। अल्लाह के नबी ने कहा था जब तक मैं ना कहूँ यहां से ना हिलना। कुछ ने कहा नहीं, जंग खत्म हो गई है, और ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ जंग के लिए थी। और कुछ ने कहा कि देखो माले गनीमत जाके जमा करते हैं ताकि जल्दी जल्दी ये चीजें मुसलमानों के हाथ में आ जाएं और फिर सबको मिल जाएं। यानी मुख्तलिफ इख्तलाफ राय हो गया, जिस तरह हम कहते हैं ना कि मुख्तलिफ बातें होने लगी, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। तो तनाज़ा से मुराद यहाँ कोई हाथापाई नहीं थी, नज़ा से है ये लफ्ज़। नज़ा कहते खींचने को, ये जो मौत के वक्त को नज़ा का वक्त कहते हैं ना। और 30वें पारे में सूरह नाज़ियात में भी आता है, वन नाज़ियाति गरका, वो भी इसी से है, खींचातानी। हम रूह को निकलने नहीं देना चाहते और मौत के वक्त हमारी रूह खींचती है, तो नज़ा कहते हैं खींचातानी को। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप अपनी कर रही हैं, एक अपनी राय दे रहा है, वो कह रहा है मैंने ऐसे करना, तो वो कहता नहीं, ये वो। हमारा तो ये आम जिंदगी का मामूल है, हम घरों में बैठ के बातें भी करते हैं तो ऐसे ही लग रहा है कि लड़ाई हो रही है, हर बंदा अपनी राय दे रहा है। तो तनाज़ा, जिदाल, झगड़ा, इन सब में बहुत फ़र्क है। हाथ जब या पीछे लफ्ज़ पढ़ चुके तो कहा कि तुम्हारे में बस मामले में, फिल अम्र से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया था वो क्या था? कुछ ने कहा ये कहा था, कुछ ने कहा ये था, कुछ ने कहा ये कहा। इससे क्या पता चलता है कि एक ही बात होती है लेकिन मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ तरफ ले जाते हैं, और बाज़ लोग उसको फिर इतना ज़्यादा दूसरों पे इम्पोज कर देते हैं, उनको मुसल्लत कर देते हैं कि जिसकी वजह से ये लगता है कि उनकी बात ही दुरुस्त है, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि उनकी बात दुरुस्त हो। वह असही तुम, फिर तुमने नाफरमानी की। असही तुम से यहाँ क्या मुराद है? दर्रे को छोड़ देना, खाली कर दिया। कब हुआ ये सब कुछ? मिम्बादी मा अराकुम मा तुहिब्बून, जब तुमको वो दिखा दिया गया जो तुम पसंद करते थे। क्या दिखाया गया था? नंबर एक माले गनीमत, और दूसरी बात फतह। दोनों की तरफ इशारा है कि जब तुम्हें लगा कि तुमने मैदान मार लिया तो बस तुम खुश हो गए। क्या हुआ? मिन को मई और दुनिया, तुम में से कुछ वो थे जो दुनिया चाहते हैं। ये कौन साथी थे? ये तकरीबन 30 से 40 के बीच जो साथी दर्रा छोड़ चुके थे, उनकी तरफ इशारा है। हालांकि वो माले गनीमत को लेने गए थे, कोई अपने लिए नहीं, लेकिन बहरहाल दुनिया की चकाचौंध थी। वह मिन को मई युरीदुल आखिरा, और कुछ ऐसे हैं जो आखिरत चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ रहने वाले 10 से 12 लोग। वो अपनी जान दे गए, उन्होंने आखिरत कमा ली, लेकिन कुछ लोग दुनिया के पीछे चले गए। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी भगदड़ थी कि जिसकी वजह से फिर इतने मुसलमानों को नुकसान हुआ, इतना बड़ा इनसे खता हो गई। और सहाबे कराम की ये खता, इसलिए अब हम इसका तذکرہ नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि सुम्म सरफकुम अनहुम लियब्तलियकुम, फिर तुमको उलट दिया उन पर ताकि तुमको आजमाए। इसमें इशारा है वो दूसरी जंग की तरफ जो फिर उनके दूसरे हमले के बाद हुई थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आजमाया। यहाँ लफ्ज़ लियब्तलिया का कुम बड़ा काबिल गौर है, और वो क्या है कि गज़वे उहद में सहाबा कराम से जो गलती हो गई, राय में तब्दीली हो गई, इज्तिहादी बात थी, कुछ भी थी, इसके बावजूद भी सहाबा कराम का मुकाम बड़ा बुलंद है, और अल्लाह ताला ने इनको ख़ास रियायतें दी। इन आयात में लियब्तलियकुम फरमाकर ये जाहिर कर दिया कि आर्जी शिकस्त की सूरत में जो हालात पेश हुए वो सज़ा नहीं थी, वो आजमाइश थी। क्योंकि बस दफ़ा आजमाइश की चक्की से गुजारना लाजमी होता है इंसान को निखारने के लिए। वलकद अफानकुम, और अलबत्ता उसने तुमको माफ़ कर दिया। ये बात बताती है कि सहाबा की ये गलती इंदल्लाह माफ़ है। आज अगर इस वाक्य को बुनियाद बनाकर कोई सहाबा पर कीचड़ उछा ले, लान तान करे, तो वो अल्लाह के इस हुक्म का इनकार कर रहा है कि अल्लाह उनको माफ़ कर चुका, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, अल्लाह ताला ईमान वालों पे बहुत फजल करते हैं। यहाँ फजल से क्या मुराद है? कि अल्लाह ताला उनकी खताओं को माफ़ करके उनको मजीद दोबारा मौका देना चाहते हैं। फिर उनको बताते हैं कि देखो तुम गम ना करो, डिप्रेस ना होना, क्योंकि देखिए किसी से कोई नुकसान हो जाता है ना, वो नुकसान तो होता ही है, लेकिन उस नुकसान का बहुत बड़ा एक और असर आता है कि जिससे वो नुकसान होता है ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है। मुझे याद है हमारी फैमिली में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसे दो भाई भाई होते हैं शहर में, तो एक भाई के घर में दूसरे भाइयों के बच्चे भी आए हुए थे। अब हुआ क्या कि बच्चे छत पे खेल रहे थे, तो अल्लाह को पता है क्या हुआ, किसकी गलती थी, तो जो भाई का बच्चा दूसरे घर से आया था वो छत से गिरा और बहरहाल कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। जिस खातून का वो घर था, यानी भाभी थी बच्चे की, चच्ची होगी या ताई होगी, वो डिप्रेशन में चली गई कि हाँ हाँ मेरे घर में आके ये बच्चा क्यों मरा है, या मैंने इसको नहीं देखा, या मैंने क्यों छत का दरवाजा खुला रखा। यानी जब बंदे की वजह से दूसरे को नुकसान होता है तो उससे डिप्रेशन बहुत होता है, और जो ही डिप्रेशन आता है तो वहन आने लगता है, सुस्ती आती है, इंसान कहता है अब बस मैं आज के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। देखिए जब कामयाबियां होती है ना तो लोग आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं, खूब बोलते हैं, जरा उनसे गलती हो और उस गलती पर टोके तो साथ ही कहते हैं बस आज के बाद मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, नहीं मुझसे बातें नहीं सुनी जाती, नहीं मुझे नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो फौरन सोच लें कि अभी भी आप सेल्फ सेंटर्ड है। हालांकि असूल के जो चलेगा वही तो गिरेगा, भागते हैं शाहसवार वही तो गिरते हैं। आपसे गलती हुई, स्कोर भी तो पता चला इस बात से कि आपने काम किया। जो काम करे और गलती करे वो उससे बहुत अच्छा है जो काम ना करे और गलतियों से बचा रहे। बाज़ लोग अपनी जान को वो बचाते हैं, वो भी असल में बुद्धि होता है, अपने नफ्स को पूछते हैं कि हमें इनको कुछ नहीं कहना, हमें किसी को उसे बात नहीं सुननी। तो ऐसे लोग फिर अलग थलग तो रह सकते हैं लेकिन वो किसी के साथ मिलके काम नहीं कर सकते। उम्मीद हो रही थी कि सहाबा कराम डिप्रेशन में चले जाते, ये क्या हो गया, 70 लोग मारे गए। देखिए एक का कत्ल हो जाए या एक का कत्ल खता हो गया या एक बंदा एक बच्चा मर गया तो उससे कितना एक औरत के दिल में खौफ आया। तो जहां सहाबा को ये लगा होगा कि हमारी वजह से ये हुआ, तो उम्मीद थी कि उनके दिल पे बोझ होता, अल्लाह की रहमत देखिए कि उसने उनके इस बोझ को दूर किया। अगली आयतों में आप देखेंगे कि सहाबा की और तारीफें हो रही हैं, क्यों काम करते हो गया, चलो चलो कोई बात नहीं, वलक दफानकुम, अल्लाह ने माफ कर दिया है, मत सोचो, डोंट थिंक टू मच। बाज दफा लोग इस तरह की चीजों में चले जाते हैं और मुजरिम बन जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनको इस चीज से निकालता है। फिर इसमें आप देखिए कि ये जो बात है कि कुछ लोग तुम में से दुनिया चाहते थे, तो इस पे भी बात हो सकती है कि सहाबा में से जो दुनिया चाहते थे तो क्या दुनिया चाहने से मुराद ये है कि कोई नाजायज़ काम कर रहे थे, तो यहाँ मुराद ये नहीं है। यहाँ मुराद क्या है कि अल्लाह ताला के नबी का हुक्म था, लेकिन बाज़ लोगों की तबीयत में जब जल्दबाजी होती है तो जूं ही वो चीज़ उनके सामने आती है जो इंसान के नफ्स को बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो उस वक्त वो असल हुक्म भूल चुके होते हैं। हालांकि सहाबा को पता था कि माले गनीमत जब जमा होगा सबको एक ही जितना हिस्सा मिलना है, हमें नहीं मिल जाएगा, इसके बावजूद बस दुनिया का माल दे के बंदा रह जाता है। अब देखिए कि आप कभी देखे कोई खवातीन, पता नहीं मेरी बात किसी को बुरी ना लगे, यानी बाजार में जाते जाते जूं ही ज्वेलर की दुकान पे कोई गोल्ड पे नजर पड़ी उसमें इतने महव हुए कि सामने से पिलर को टक्कर हो गई, ऐसा होता है? मैं तो सोचती हूँ कि औरतें ड्राइविंग करती हैं बड़ी खतरनाक बात है, इनको अगली औरत की उंगठी नजर आ गई इन्होंने जाकर टक्कर मार देनी है। यानी इंसान की कमजोरी है कि जूं ही उसकी चीज पसंद की उसको दिखती है तो अल्लाह का हुक्म भूल जाता है। हाँ तो ऐसे लोगों को अगर अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात कह दी तो इससे कोई बुरी बात नहीं समझनी चाहिए कि इनका कोई मामला था। अब अगली आयतों में अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे मंजर खींचते हैं कि जैसे हम टीवी की स्क्रीन पे बैठे हुए उस मैदान ओहद की झलकियां और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। क्या इस तुसईदूना, जब तुम चढ़ते ही जा रहे थे, साइदा से स्वाद आइन दाल, ऊपर भी चढ़ना होता है और सीधा जाना भी होता है। ये जो लिफ्ट होती है उसको अरबी जुबान में मसद भी कहते हैं, यानी ऊपर जाने वाली चीज, नीचे लेके आने वाली चीज। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम चढ़ रहे थे जमीन में, जब इंसान दूर तक दौड़े तो इसको इसआद कहते हैं, और जब ऊपर की तरफ चढ़े तो उसको सऊद कहते हैं। सिर्फ एक अलिफ का फर्क है, स्वाद ऐन वाव दाल होगा तो ऊपर चढ़ना, और अलिफ लगा दें अल असाद होगा तो सीधा चलना। और यहाँ क्या है, इस तुस इदूना, तुम चढ़े जा रहे थे, वला तलवूना, और नहीं तुम मुड़कर देखते थे। तलवून का लफ्ज कौन सा भला, पीछे पड़ा कहीं आपने? जी बताइए जी, इस जलवून अल सिनतहुम, तो मोड़ना यानी ट्विस्ट करने के मानों में कि वला तलवून अला अहदिन, और ना तुम मुड़कर किसी एक को देख रहे थे। यहाँ अला अहदिन से मुराद के जो पीछे लोग रह गए थे, इशारे उन लोगों की तरफ के जो दर्रा छोड़ चुके थे। तरी मच गई, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो तुम तो यूं भाग रहे थे, वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम, और रसूल तुमको पुकार रहा था तुम्हारे पीछे से। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के नबी ये जंग शुरू करवा के जाके कमरे में बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बैठ गए, या जलजला प्रूफ या बॉम्ब प्रूफ बिल्डिंग में नहीं थे, अल्लाह का नबी भी पीछे ही था। यानी सबसे डेंजरस जगह थी वो दर्रे की, जहाँ अल्लाह के नबी मौजूद थे और वो पीछे से पुकार रहे थे। और आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सीरत में कि अल्लाह के नबी कहते हैं, इलैया इबादी इलैया इबादी, मेरी तरफ आओ अल्लाह के बंदो, अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतना आप लोगों को पुकार रहे थे कि लोगों रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन उस वक़्त एक ऐसी भगदड़ी मची, इतना खौफ हुआ कि कोई बंदा इस बात को सुन के नहीं दे रहा था। नतीजा क्या हुआ? फअसाबकुम गम्मम बिगम्मिन, फिर पहुंचा दिया तुमको गम के बाद गम। क्यों? लिकै ला तहज़नू, ताकि ना तुम गम करो। किस चीज़ का? अला मा फातकुम, उस पर जो तुमसे फौत हो गया, जो तुम्हारे हाथों से निकल गया, जो तुमसे चूक गया। तुम्हें इसका गम ना हो जो तुम्हारे हाथ से मैदान मारा गया, यानी जो शिकस्त हो गई, जो तुम्हें मुश्किल पड़ी, वो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकली, इसका गम ना हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि ओहद के अंदर जो भगदड़ मची, उसके बाद तुम्हारे अंदर इस तरह की हालत हो गई कि तुम किसी की बात सुनने को नहीं थे, इधर उधर भाग रहे थे। अल्लाह का प्यारा रसूल तुम्हें पीछे से बुला रहा था कि आओ इधर देखो, लेकिन ऐसे वक्त में तुम बिल्कुल इधर उधर जब हो गए, तो अल्लाह ने फिर गम के बाद गम दिया। अब यहाँ कौन से गम है? पहली बात है फतह के बाद शिकस्त का गम। पहले फतह हो चुकी थी, अब शिकस्त हो गई। फिर 70 सहाबा-ए-कराम के मारे जाने का गम, एक की लाश दूसरे की या लाश। ओहद के बाद घर घर से लाशें उठ रही थी, इतना गम था, हर तरफ ऐसे लग रहा था कि जैसे कब्रिस्तान बने हुए हैं। अल्लाह ने इतने गम दिए, क्यों दिए? यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत नुक्ता है। क्या? गम क्यों दिए? लिकै ला तहज़नू अला मा फातकुम, ताकि तुम उस छुटी हुई चीज़ पे गम ना करो जो तुमको नहीं पहुंची या तुमसे जो छूट गई। यहाँ क्या पता चला कि जब इंसान किसी एक चीज़ के गम में होता है ना, तो वो उसी गम को सीने से लगा लेता है, चूमता है, चाटता है, रोता है, धोता है, रुलाता है, रहता है, जब तक कि उसको कोई अगला गम ना आए, वो पिछले गम को सीने से लगाता है। इसके बरक्स कभी एक गम हो और अल्लाह ना कर उसके बाद फौरन दूसरा गम हो जाए, तो पहला भूल जाता है ना। अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा बड़े बड़े गमों से निजात देने के लिए छोटे छोटे गम देता है। मसलन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक औरत है, उसके सर में दर्द है, बहुत तकलीफ में, बीमार है, बिस्तर पे लेटी हुई है, बहुत उसको मुश्किल है। इतने में उसके छोटे बच्चे को उसकी आंखों के सामने चोट लग जाती है। आप बताइए क्या होता है? बच्चे की चोट और उसका बहता हुआ खून देखकर माँ अपने बेड पे रहती है? थोड़ी देर में वो उसके साथ ऐसी बिजी हो जाएगी कि उसको खुद भी याद नहीं रहेगा कि मैं भी बीमार थी। इंसान इतना कमजोर, ये लफ्ज इंसान जो है ना, ये नसीहा से भुला देता है अल्लाह ताला, कि जूं ही अगली चोट पड़ती है ना, तो फिर पिछली कम लगती है। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। अल्लाह की ये शान होती है कि गमों पे गम डाल डाल के पिछले गम का असर कम कर देता है, ताकि इंसान आगे काम करे। बाज़ दफ़ा बहुत गहरे सदमे होते हैं, एक के बाद दूसरे की खबर, दूसरे के बाद तीसरे की खबर। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इंसान फिर पहले गम के असर से निकल कर दूसरे को लेता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका वो आदी हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं वला मा असाबकुम, और उस पर भी गम ना करो जो तुमको पहुंच गया। हो गई बात, होनी थी, जो चीज़ टूटनी थी टूट गई। बस लोगों की चीज़ टूटती है ना, तो साथ अपना दिल भी तोड़ लेते हैं। प्लेट टूटी, दिल भी टूटा, हाँ आंसू बहने लगे। अब क्या हुआ जी? वो मेरे जहेज की प्लेट टूट गई। टूट गई, आपके रोने से वापस नहीं आएगी। जिंदगी के सफर में आगे देखना सिखा रहा है अल्लाह ताला। इस गज़वे अहद का एक ही नुक्ता मुझे तो दिखता है कि आगे देखो मत पीछे देखो। बस लोगों की एक बुरी आदत होती है, कोई एक सदमा आ गया, सारी जिंदगी उसको नहीं भूलते, जहां बैठेंगे उसका तذکرہ। मिसाल है, एक औरत है, उसका घर नहीं बसा, तलाक हो गई। कुछ साल कुछ महीने के बाद अल्लाह ने एक और घर दे दिया, अल्लाह की रहमत से वहां खुश थी। फिर भी बैठे पिछले को याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं। मंगनी टूट गई, भाइयों के बहन भाई के घर में रिश्ता हुआ, मंगनी टूट गई किसी वजह से। अब वो लड़की लड़का कई साल के बाद माँ बाप बन चुके होते हैं कई बच्चों के, लेकिन ये जब बैठेंगे कहेंगे उसने किया क्यों, मुझे समझा क्या, मेरी कदर नहीं की, मुझे ये किया। जो लोग इन चीजों में रहते हैं ना, वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। ये एक ऐसा गम है कि जब एक इंसान अपने आप को लगा लेता है ना, तो दुनिया का हर गम हल्का हो जाता है। मुझे किसी ने कहा कि बड़ी परेशानी है, बहुत तकलीफ है, दुआ करें। हर वक्त ही इंसान ये सोचते रहते हैं कि हम बड़े परेशान हैं, और हर बंदा सोचता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, इससे बड़ा गम लगा लें, आपका ये गम छोटा हो जाएगा। भाई बड़ा गम क्या है? आखिरत का गम लगा लें। जिंदगी में एक बेहतरीन असूल है जीने का, कोई गम आए, मौत, बीमारी, नुकसान, हादसा, चोरी, चिकारी, तो फौरन अपने आप को उस वक्त कहें अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं जिंदा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा भी तो गम आ सकता था। अभी तो सिर्फ खून निकला है, टांग भी तो टूट सकती थी ना, अभी तो ये हुआ, अभी तो और भी होगा। जो लोग इस तरह सोचते हैं ना, उनका गम कुछ नहीं बिगाड़ते, और जो इससे ऑपोजिट सोचते हैं ना, तो गम अपनी यादगारें छोड़ के जाते हैं उनके पास, शुगर की सूरत में, ब्लड प्रेशर का मर्ज हो गया, चेहरे पे छाइयां पड़ गईं, रंग जल गया, माथे पे तेवरियां हो गई, आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। क्या होगा भाई, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं है आपके हाथ में, जो अल्लाह ने दिया दिया, आप उस पे राजी रहिए। मोमिन का यही मामला है, आजिबुल अमरुल मोमिन, गम मिलेगा खुशी होगी, खैर मिलेगी खुश होगा तो जन्नत मिलेगी। जिंदगी में हर दिन हमारी जिंदगियों में ऐसे ओहद बरपा रहते हैं, निजी जिंदगी में, इज्तमाही जिंदगी में, दीनी जिंदगी में, दुनियावी जिंदगी में। ये नहीं हो सकता कि हम बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ गुजारें, चलेंगे तो ठोकर लगेगी, मट्टी पड़ेगी, आपस में इख्तलाफ राय होगा, झड़पें होंगी, जिनसे सोच नहीं मिलती उनके साथ आपकी अनबन लगी रहेगी। आपने क्या करना है कि लिकै ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम, यहां ये बात की है, यही बात आगे जाके सूरत हमीम सजदा में भी आती है। मेरा हले हमीम सजदा ही है जिसमें दुनिया की हकीकत बताई गई, और उसी में कहा गया कि तुम्हारे ऐसे जो चला गया, फला ता सलामा फातकुम, कुछ इस तरह के लफ्ज हैं। तो ये असूल जिंदगी में बनाएं, और खास तौर पे अगर आप किसी बड़े मकसद के लिए जीना चाहते हैं, यकीन करें एक वक्त ऐसा आता है आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि आपको अपनी जाती जिंदगी का गम गम ही नहीं लगता। मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को कुछ साल पहले आजमाया, अल्लाह का शुक्र है एक ही फिक्र है कि अब ये क्लास है तो अब दूसरी है, अब यहाँ जाना है, वो करना है, अगर सोना भी है तो इसीलिए सोना है कि भाई अगली क्लास के लिए तैयार है, खा रहे हैं तो इसीलिए खा रहे हैं कि हिम्मत हो जाए, बीमारी ना हो। लेकिन कुछ पीछे परेशानी थी, यानी मेरे बहन भाइयों में किसी के साथ कोई ऐसी परेशानी होगी, मुझे पहले तो पता ही ना चला क्योंकि मैंने पूरा महीना फ़ोन ही नहीं किया, इत्तेफाक से बात ही नहीं हुई। जब खैर बात हुई मेरी, तो ज़ाहिर बात बहुत बड़ी थी, मुझे बहुत ही एकदम सुन के तकलीफ़ हुई। अब मैंने फील किया कि जब से मैंने वो खबर सुनी, तो मैं क्लास पढ़ाने बैठूं तो भाई याद आ रहा है, कुछ भी काम करी हूं तो दिल में बड़ी गम। अब मैंने सिर्फ यकीन करें 24 घंटे भी नहीं अपने आप को दिए, मैंने कहा अल्लाह ताला ये क्या हो रहा है। मैंने जायनमाज बिछाया, जितना मैंने रोना था रो लिया, मैंने कहा अल्लाह ताला तुझे पता है मुझे भाई से मोहब्बत है, लेकिन तुझे पता है मुझे अपने कुरान से सारी दुनिया से ज्यादा मोहब्बत है, तू मेरे दिल से उसका गम निकाल, मैंने उसको तेरे हवाले किया, मैंने गम करके भी क्या करना है, मुझे गम ना हो। यकीन करें उसके बाद अगली क्लास में मैं इतनी रिलैक्स थी कि मुझे याद ही नहीं, और अल्लाह ने सारे मामले खुद ही ठीक कर दिए। मैंने कहा अल्लाह ये कितनी बड़ी रहमत है, ये किताब आपको सारे गम भुला देती है। यकीन करें आप कोई दुख वाली सोच लेके बैठे इस क्लास में, थोड़ी देर के बाद आपको याद ही नहीं होगा कि क्या थी। हाँ निकले तो फिर आपको ख्याल आ जाए सो आ जाए, ये है वो अल्लाह की रहमत कि जो अल्लाह सिखाता है, यही है अंतजलिल कुरान अलअजीम रबी कल्बी, कि अल्लाह इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे। जो लोग इन्हीं गमों में जीते हैं ना, फिर उनको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ को आजमाया, मैं अपने शौहर से भी कभी किसी की को बात करूँ ना, और अल्लाह के हुक्म से आप फ़ोन करके तो देख लें अपने मुल्क, फलां बीमार, फलां का ये हो गया, फलां ये, मैं इसीलिए भी शायद कम करती हूँ और मौका भी नहीं मिलता। लेकिन इंसान है ना हम, इतने इधर उधर हमें गम दिखेंगे, तो मैं कभी भी अपने शौहर से कहूँ ना कि देखें अब ये वो हो गया, तो ये आगे से फिर वही बात कहते हैं कि ला इन शकर तुम लाजीद अन्ना को, कहते हैं नहीं ये बात नहीं, कोई गम नहीं होते, बस लोग शुक्र थोड़ा करते हैं, शुक्र की कमी और किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये दुनिया आपको जीने ही नहीं देगी, आप अपना गम पाल के देखें, आप कल क्लास में आ ही नहीं सकते, नहीं मैंने एक बुरी खबर सुन ली, अब मैं डिप्रेस हूँ, मैंने अब अक्सर फ़ोन करना है, मैंने ये करना है, किसी को अपने बारे में पता चल गया मुझे बीमारी है तो है, अल्लाह तुझे पता है डॉक्टरों से ज्यादा, तुझे मेरे अंदर का पता है, तू खुद ही ठीक कर दे, तेरे स्कैनर डॉक्टर्स के स्कैनर से अच्छा है, मैं नहीं हर दिन टेस्ट करा सकती, जो करना है कर दे, और अगर कहीं कोई सबब बनता है तो खुद ही बना दे, तू मुझे उधर ही ले जा जहां मेरे लिए शिफा है, बाद दफा लोग 10 जगह पे जाते हैं, फिर कई सही डॉक्टर का पता चलता है। आप कहें, अल्लाह मुझे नहीं फिरना, मैं इतनी अहम नहीं हूँ, तेरा दीन अहम है। देखिए मैदान उहद में मुसलमानों को अपनी जानों से उठा के अल्लाह ताला दीन की तरफ ला रहा है कि वो अल्लाह के बंदो, अगर तुम इस गम का शिकार हो गए तो ये इस्लाम का बेड़ा कौन उठाएगा। हम अपनी जात के गमों में जीते हैं ना, मुझे फलां ने ये कह दिया, आज मैं डिप्रेस हूँ, आज फलां की तेवरी बिगड़ गई, बस दिल ही नहीं है, और आज इतने खुश हैं कि अब आने का दिल नहीं। यही दो चीज़ें हैं ना जो हमें अल्लाह के दीन से दूर किए हुए हैं। अपनी जात से ऊपर उठिए, ये सबसे बड़ा बुत है जो तोड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं, वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह खबरदार है उससे जो तुम अमल करते हो। तुम अपने आप को देखो, अल्लाह के सामने रखो, मेरा आखिर तो ठीक है, मेरे साथ ये मामला तो अच्छा है। और जूं ही बंदा अल्लाह के ऊपर अपने मामले डालता है, सुम्मा अंजल अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन, फिर उसने डाल दिया तुम पर गम के बाद एक अमन। ये है अल्लाह के वादे। जो बंदा अपने मामले अल्लाह पे छोड़ता है, जो अपना गम उतार के दीन का गम लगाता है, सहाबा ने ऐसे ही किया, अल्लाह कहते हैं आओ अब देखो मैं तुम्हारे गम कैसे धोता हूँ। आपको पता है कि लफ्ज़ गम क्या है? गमाम से, गाइन मीम मीम, छा जाना, यानी गम दिल पे छा जाता है, जैसे बादल छाते हैं ना, क्लाउड्स को कहते हैं गमाम, पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग। अल्लाह ताला कहते हैं इतने बड़े गम के बाद मैंने तुम्हें अमन दे दिया। कैसे दिया? नुआसन, वो एक ऊंग थी, नुआस कहते हैं ऊंग को। कैसे हुई? यक्षा तौइफतम मिनकुम, वो छा रही थी तुम में से एक गिरोह पर, यानी तुम में से एक बड़े गिरोह पर ऊंग तारी हो गई। ये थी अल्लाह की मदद। ये कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने मैदान उहद में जख्मों से चूर चूर, दुश्मन सामने, जंग लगी हुई है, और सहाबा को सुला दिया। कैन यू इमेजिन? सहाबी अपनी अपनी सवारियों पे ऊंग रहे हैं। अबू तलहा कहते हैं कि तलवार मेरे हाथ से छूट छूट जा रही है, ऐसी ऊंग आई, हल्की सी ऊंग आई, और उसके बाद लोग फ्रेश हो गए। इसको हमारी जुबान में नैप कहते हैं, यानी एक वो नींद होती है जो नमाज में आती है। फरमाया ये शैतान की तरफ से है, वो सुलवाता है। कुरान की क्लास में अगर नींद आती है तो ये शैतान की तरफ से है, या आपके अपने नाश्ता हैवी करने की वजह से है, ऊंग की वजह से है। लेकिन मैदान जंग की नींद ये अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह ऐसे टेंशन रिलीव करता है, इस तरह मोमिन का स्ट्रेस उसका ख़त्म करता है, एक हल्की सी झपकी आती है और लोग फ्रेश होते हैं। सहाबा कहते हैं हम इतने फ्रेश हो गए, ऐसे लगा कि बस कोई मसला ही नहीं है। और आप आजमा के देखें, जो बहुत दुखी होता है ना, आप उसको चंद मिनट के लिए सुला दें, कहते ना इसको सुला दो, इसको गम बड़ा है, सोने के बाद इंसान अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। अल्लाह ताला ने वहाँ ऐसी हालत कर दी। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोग, और भी जब सीरत को देखेंगे। बारिश शुरू हो गई, जब बारिश का पानी ऊपर पड़ा उससे सारा मैल कुचैल गंदगी दूर हो गई, जो दिल में वसवसे आ रहे थे वो सब खत्म हो गए, और लोग बिल्कुल मुतमईन हो गए। अल्लाह ताला ने कैसे लोगों को गमों के बाद खुश कर दिया। चूर चूर थे, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, खून में लिपटी हुई, खौफ और खिरास है, लेकिन मुखलिस लोगों को अल्लाह ताला गनूदगी दे देता है और ये फिर फ्रेश हो गए। यही कैफियत ईमान वाले की आम जिंदगी में भी होती है। यहाँ से ये भी एक पॉइंट रखिएगा, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम बैठे बैठे सो जाते हैं, उनको 5 मिनट दे दें कुर्सी पे, पानी मांगेंगे आप लेने जाएंगे तो आएंगे तो वो खराटे भर रहे हैं। और कुछ कहते हैं नींद नहीं आती, ट्रैंक्लाइजर्स लेने पड़ते हैं, नींद उड़ी हुई है। अगर आप ये जुमला बोलते हैं ना अपने लिए कि मेरी नींद उड़ी हुई है, तो बस अपनी फिक्र करें, ईमान का ग्राफ गिरा हुआ है। नींद उसकी उड़ती है जो अपने मामले अल्लाह की बजाय अपने हाथ में रखता है। क्योंकि गम आया तो नींद उड़ गई, खुशी आई तो घर में इतने काम है, अब नींद उड़ गई। नहीं भाई, ईमान वाले को तो नींद आएगी, वो गहरी नींद नहीं होती कि वो फिर घोड़े बेच के सोच गया, नुआस होता है, ये नींद का इब्तदाई दर्जा होता है, बैठे बैठे ऊँघते रहना हल्की, जैसे कभी आप भी ऊँघते होंगे क्लास में है। तो ये जो कैफियत होती है ना इस तरह की, कि जिससे इंसान फ्रेश फील करे। और मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें, क्या होगा भाई, इसमें 10 मिनट में आंखें बंद करके उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। कभी ऐसा होता है, बहुत टाइट स्केड्यूल होता है, स्पेशली जब ट्रिप्स होते हैं तो एक दिन में 3 दिन दर्स भी होते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो उसमें सिर्फ 10-15 मिनट तन्हाई में इस तरह का मौका मिल जाए कि जरा सा बंदा अपने आप को फ्रेश कर ले, तो ऐसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। अल्लाह ने सहाबा किराम को वहां सुला दिया, जरा सोचें, आम जिंदगी में ये होता है? कोई सो सकता है? कितना बड़ा खतरा हो सकता है कोई गाड़ी चलाते हुए सो जाए, हाँ? लेकिन ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन एक तरफ ये मामला था और दूसरी तरफ सुन लीजिए, वताइफतुन कद अहमत हुम अनफुसुहुम, और एक वो गिरोह था जिनको बस अपनी जानों की फिक्र पड़ी हुई थी, वो अपनी जानों के हम में मुब्तला थे। इनका हाल क्या था? यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक की ज़न्नल जाहिलिया, ये अल्लाह के बारे में ना हक किस्म के गुमान कर रहे थे, जाहिलियत वाले गुमान थे। क्या कह रहे थे? यकूलून हल्लना मिनल अम्री मिन शई, कहते थे कोई हमारी भी बात सुनी जाएगी कि नहीं, कोई हमारा भी मशवरा सुनेंगे नहीं, किसी काम में हमारा भी कोई अमल दखल है कि नहीं, कोई हमें भी काम देते हैं कि नहीं, इस तरह की बातें करते थे। यानी ये वो लोग थे, यहां मैं थोड़ी सी बात कर दूं क्योंकि आयत लंबी है, तो मैं चाह रही हूं साथ ही साथ इसको लेते जाएं। मुनाफिकीन की तकरीबन 300 की तादाद जो थी वो तो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ शुरू से निकल गई, और ये अल्लाह की बड़ी रहमत होती है, खोटे लोगों को अल्लाह शुरू में अलग कर देता है। सूरह तौबा में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि बाज दफा कुछ लोगों का निकलना इंसान को बड़ा तकलीफ देता है अपनी लश्कर में से, फौज में से, क्योंकि वो बहुत एक रीजनेबल किस्म की अमाउंट थी, 300 लोग थोड़े नहीं थे, अल्लाह के नबी के दिल को चोट तो पड़ी होगी। लेकिन आप देखिए कि वो निकले तो बेहतर हुए, क्यों? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर वो तुम्हारे साथ आ भी जाते तो घोड़े दौड़ाते, किस चीज़ के? फितनों के। तौबा में बहुत इसकी डिटेल आएगी। यहाँ उहद के मैदान की अगर हम बात करें तो ये तो चले गए, लेकिन एक मुख्तसर सी जमात थी, एक शख्स था मैनब मीम आई नून बा बिन खुशैर इसका नाम था, और ये इसके गिरोह के लोग थे। इनके दिल में भी खोट था, लेकिन ये जो थे ये नहीं जा सके। जब अल्लाह ताला ने मुखलिस सहाबा को नींद दी ना, तो इनको नींद नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि ये वो लोग थे ना, तो इनको अल्लाह के नबी की सलामती अजीज थी, ना इनको इस्लाम की कामयाबी थी, इनको तो सिर्फ अपनी पड़ी थी कि किसी तरह यहां से जिंदा सलामत बच जाएं, कि अगर हम यहां से बच गए वापस चले जाएं। अब हुआ क्या कि जब जंग का पांसा बदल गया, इनका छुपा हुआ निफाक और इनकी इस्लाम दुश्मनी इनकी जुबान से जाहिर हुए बगैर ना रही, कि वो बात जो कल तक इनके दिल में थी वो इन्होंने जुबान पे रख ली, चेहरे में गोइयां शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। अच्छा, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचें। आप गाड़ी में जा रहे हैं, एक बंदा ड्राइव कर रहा है, पांच बंदे माशाल्लाह या चार लोग गाड़ी में बैठे हैं, बातें खुशगप्पियां सब अच्छा है, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई मेरा लिए एक वर्ड ऑफ थैंक्स नहीं होगा कि शुक्र है हम तो रिलैक्स खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और ये बंदा चला रहा है और ये खाए पिए बगैर अपने आप को हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। आप जरा देखें गाड़ी में झटका लगे हैं, जरा आगे कोई चीज आ जाए ब्रेक लगाए, तो पांचों पीछे वाले बोलेंगे देखा नहीं था स्पीड कम करनी थी। यानी कहते हैं कि मुसीबत तनहा नहीं आती, एक तो मुसीबत आती है, दूसरे शुरू हो जाते मशवरे, और हमारे कल्चर में तो मशवरे मुफ्त बिकते हैं, और ना माने आगे पढ़िएगा मशवरों की बात भी आ रही है। अब हुआ क्या कि जब मैदान तो बहुत अच्छा था, तो ये दबेरे दुबके रहे कि चलो हम भी इनके पीछे पीछे बैठे हैं, अभी माल गनीमत जमा होगा चल पड़ेंगे, लेकिन कहानी पलट गई। अब वो जो भगदड़ मची, अब तो उसमें नहीं पता चलता कौन मोमिन है कौन मुखलिस है, किसी के ऊपर भी तलवार उठ सकती थी, तो इस वक्त इनको गम पड़ गई, अहमत हुम अनफुसुहुम, अपनी जान का गम। देखिए ये लफ्ज हाईलाइट करने के काबिल है, अल्लाह इस हम को निकालना चाहता है हमारे दिल से कि मत अपनी जात में रा करो। गम क्या था कि अल्लाह करे यहां से बच जाएं, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा नतीजा, क्या हुआ? पहली चीज कहां से हुई? यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक ज़न्नल जाहिलिया, ये पहला दर्जा होता है। जब दिल खोटा होता है ना, जब दिल में अपनी जात का हम होता है, तो सबसे पहला उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि अल्लाह से बंदा बदगुमान होता है। अल्लाह से बदगुमानी कैसी है? हाँ, मसलन क्या मुश्किल है, इतने सख्त हुक्म दे दिए, मैदान जंग में लाके बिठा दिया, ये अल्लाह को भी पता नहीं क्या, खुद ही इनको मार लेता, हमें क्या मुश्किल थी। अच्छा, अल्लाह के ऊपर जन के साथ ही नबी पे जन शुरू हो गया, आगे पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, नबी के बारे में बातें करने लगे, इनको तो वॉर करनी नहीं आती, ये कोई बात थी? भला कोई जंग है, ये तो खुदकुशी के बराबर है। तबूक के मौके पे हकीकत में ऐसे लग रहा था कि मुसलमान मरने के लिए जा रहे हैं, चुटकी भर मुसलमान इतनी बड़ी ताकत को कुचलने जा रहे हैं, उस वक्त भी मुनाफिकों की दिल की बातें जुबान पे आई, कहने लगे इनको तरीका तो कोई नहीं आता, ऐसे ही बातों में आ जाते हैं, ये जज्बाती हैं नबी, ना इसमें जीतना, एक ने नहीं बच के आना, منافق بیٹھ گئے تھے مدینے کے راستے میں، کہتے تھے دیکھنا ابھی خبریں آئیں گی فلاں مر گیا فلاں مر گیا، اور ہم بگلیں بجاتے ہوئے گھر جائیں گے. حتیٰ کہ اللہ کی نبی کی ذات پہ بھی انہوں نے الزام لگانے نہیں چھوڑے. اور ہوتا بھی یہی ہے، جب کوئی خرابی ہوتی ہے نا تو لوگ لیڈر پہ لگاتے ہیں، نہیں ان کا قصور ہے، انہوں نے قدر نہیں کی، نہیں انہوں نے کوئی سخت ہاتھ رکھا ہوگا. فلاں تو آیا تھا، مثال دیتی ہوں کہ کوئی شخص آ کے یہاں بیٹھ جائے، اب وہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو شہر کا بہت بڑا ہے، تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے، ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو گئے بیٹھ گیا. اب ہو سکتا ہے ان کو اچھا پروٹوکول نہ ملا، وہ ناراض ہو کے آگے سے چلی گئی، تو بعد میں یہی آوازیں اٹھیں گی، نہیں ان کو عزت نہیں دی، نہیں ان کو ان کا مقام نہیں دیا، نہیں انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. یہ مینجمنٹ کا نقص ہے، یہ لفظ بھی بڑا عام ہے، مینجمنٹ کے پرابلمز ہیں، اس لیے کام ٹھیک نہیں ہوئے. نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے بدگمانیاں پھیلانی شروع کی، جس کا بالکل حق نہیں تھا. دیکھیے ظن الجاہلیہ کا ہے، اسلام کے مقابلے میں لفظ جاہلیت آتا ہے، یہ ایک موٹا سا لفظ سمجھ لیں، یہ کلیہ آگے بھی آئے گا، بہت جگہ استعمال ہوگا، کہ عربک ڈکشنری میں، یعنی ڈکشنری یا لغت کہہ لیں، اسلام کا جو اپوزٹ ہے نا متضاد، وہ جاہلیت ہے. اسلام سے پہلے ہمیشہ جاہلیت ہی ہوتی ہے، جہاں اسلام نہیں ہے وہ جاہلیت ہے، چاہے آپ اس کو ماڈرنائزیشن کا نام دے دیں، اس کو ایڈوانس کلچر کا نام دیں، جہاں اسلام نہیں ہے نا زندگی میں تو وہ جاہلیت ہے. ان کے جاہلوں جیسے باتیں کیا ہو چکی تھی، کہ جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ باتیں کہنے لگ گئے، ناحق باتیں کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا، ویسے کیوں کر دیا، یہ کوئی بات ہے بھلا، یہ تو بس اب دین ختم ہو جائے گا، یہ چھوٹا سا گروہ تھا، یہ آج احد میں سے بچ کے نہیں جائے گا، اس طرح کی باتیں. یقولون هل لنا من الامر من شيء، کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا کوئی اختیار ہے، یعنی کیا ہماری بھی کوئی چلے گی. منافق کو ہر وقت یہ بڑا غم ہوتا ہے کہ میری کوئی نہیں سنتا، مجھے اہمیت نہیں کوئی دیتا، مجھے کسی بات میں کوئی شامل نہیں کرتا. آپ اس کو بالکل اپنے گھر کے لیول سے محسوس کریں، افراد خانہ میں کوئی ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے جو اکثر اس بات پہ نالا ہوتا ہے، اچھا مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں بتایا، یہ خود ہی کر لیا کام. بعض بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر بات سے پہلے ان کو بتایا جائے. اچھا اب جب ان کو کوئی بات پوچھی جائے نا، چاہے بہو ہی کی بات لے لے، مثال ہے بیٹی کی تو کوئی کہتا نہیں ہے، تو منہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن پتا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں گھر میں ہوتا کیا، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بھائی آج کیا پکا ہے، پتا نہیں مجھے کوئی پوچھ کے تھوڑی پکاتا ہے. یعنی یہ انداز کہ حل لنا من الامر من شيء، کوئی مشورہ ہمارا، کوئی رائے ہماری، کوئی شورا میں ہمیں بھی بٹھاتے، کوئی بات کرتے، کوئی ہماری آج دال گلے گی کہ نہیں، اور کچھ اسی قسم کی باتیں ان کے ساتھ میں تھی کہ آج ہمیں کچھ ملے گا. اور اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کیا آج اس میدان جنگ سے ہم بچ کے جائیں گے کہ نہیں، کوئی فتح نصرت کامیابی کوئی ہماری طرف ہے بھی کہ نہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جواب دو، قل کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، امر معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں، یعنی آپ اپنی طرف معاملے کو لانا چاہتے ہیں، آپ اپنی رائے چاہتے ہیں، اللہ کا نبی جو کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. اس سے مراد اگر وہ لیں، یعنی یہ کہتے تھے ہماری مرضیاں مانی جائیں، ہمارے مشورے مانے جائیں، اور دل میں نفاق تھا، کھوٹ تھا، تو مشورے بھی کھوٹے تھے. مثلا وہی بات ہے کہ میدان جنگ میں نہ جائیں تو وہاں رہیں یا وہاں رہیں، یہ تو ہمیشہ وہی مشورہ دیں گے نا کہ جس میں دین کو نقصان ہو. مثلا چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص ہے وہ شوق سے سیکھتا ہے، دوسرا جو وہ مارے باندھے سیکھ رہا ہے، تو پوچھا جائے اچھا چھٹی ہو جائے، تو جو شوق سے سیکھ رہا ہے وہ کہے گا نہیں ہونی چاہیے، اور جو دوسرا ہے وہ جو مارا باندھا ہے وہ کہے گا ہونی چاہیے. مثلا اگر میں کہوں کہ بریک ہونی چاہیے، بہرحال یعنی جو بندہ کھوٹا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ وہ رائے دے گا جس سے اس کاز کو نقصان ہو، تو پھر اس پہ مائنڈ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، وہ اللہ کے حکم سے بات کرے گا، ایک مطلب. اور دوسرا مانی لے کامیابی کا، تو پھر اس پہ بھی مانی یہی ہے کہ فتح ہو کہ شکست ہو، یہ پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے تھے اپنے دلوں میں وہ چیزیں، ما لا یبدون لک، جو نہیں ظاہر کرتے تھے آپ پر. لکا کون ہے ادھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک میدان میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ سے اپنے دل کی باتیں چھپا رہے تھے. انہوں نے چھپائیں، کہاں ظاہر ہوئیں؟ قیامت تک لوگوں نے یہ آیتیں پڑھ لیں. جو نفاق چھپاتا ہے وہ کبھی بھی چھپ کے نہیں رہتا، اس کی زندگی میں ظاہر ہو جائے یا اس کے مرنے کے بعد، نفاق ایسا کیڑا ہے کہ یہ باہر آ کے ہی رہتا ہے. اس لیے کبھی کال اور فیل کے تضاد کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں. کوئی نہیں اچھا لگتا چیز تو نہ کہیں اچھی، बुरी चीज़ लगे और अच्छी कह देना, बस समझ ले आपने अपनी रुसवाई का दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह ताला ने इनका ये काम यहाँ पेश कर दिया कि देखो ये क्या बातें करते हैं। यकूलूना लौ काना लना मिनल अम्री शैयुन, अगर कुछ काम हमसे भी पूछ के होता, कोई हमारा भी कोई दखल होता, कोई हमारे हाथ में भी फैसला होता, अथॉरिटी होती, तो माँ कुतिल ना हा होना, फिर हम ना या मारे जाते। ये देखिए आ गई ना दिल की बात, कि अगर हमसे पूछ के लड़ने का फैसला करते तो हम तो किसी को कहते ही ना लड़ो, हम कहते जंग की जरूरत नहीं। और इन्होंने शुरू में कह भी दिया था कि भाई मदीना में रह के लड़ो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो मुराद क्या है कि तुम यहीं बैठे रहते और हमारे कहने के बगैर, देखा हमारी मर्जी नहीं मानी ना, तो अब नुकसान हो रहा है। अच्छा जब नुकसान होता है ना तो कुछ लोग दिल से खुश हो रहे होते हैं, कहते अच्छा हुआ हमें नहीं काम दिया ना इसलिए खराब हुआ। मतलब किसी ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी जिसके बारे में कोई इंसान दिल में बुगज रखता है, अब काम नहीं सही हुआ, खराब हो गया, खाना ही पकाना था, तो कहते देखा अच्छा हुआ सबको पता चल गया, मुझे देते फिर देखते मैं कैसा करती। यानी ऐसे लगता है अंदर की घुटियां खुल के बाहर आ जाती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनकी इस बात के जवाब में कह दो, क्या कुल कह दीजिए, अल्लाह के नबी को कहा, लो कुन तुम फी बुयूतिकुम, अगर होते तुम अपने घरों में, बुयूत बैत की जमा, लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिहिम, अलबत्ता जरूर निकल पड़ते वो लोग अपनी कत्लगाहों की तरफ जिनके नसीब में लिख दिया गया था। यानी ये बात कहते हैं कि मैदाने जंग में आए हो तब मरे हो, इनको कह दो कि अगर तुम ना भी निकलते लेकिन अगर तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका होता तो तुम खुद बहुत उसी तरफ चल पड़ते, क्योंकि जहाँ किसी इंसान की मौत लिखी होती है ना वहाँ उसकी कोई ज़रूरत रख दी जाती है, वहाँ उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा काम रख दिया जाता है वो खुद पहुँच जाता है। मतलब क्या है कि मैदाने जंग में आके नहीं मरे ये, जिनको मरना था वो खुद बहुद अपनी कत्लगाहों की तरफ आएंगे। यहाँ लफ्ज़ जो है ना मदाजिहिम, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये मद जा की जमा है, द्वाद है, मीम द्वाद जी मैन मद जा, मद जा कहते हैं सोने की जगह को, ख्वाबगाह आरामगाह जैसे होती है, यहाँ मुराद है कतलगाह। कतलगाह कैसे, यानी मरता है जब इंसान तो अपनी जगह पे खड़ा नहीं रहता ना तो गिर जाता है, इसी चीज़ की बात यहाँ कर दी कि अगर तुम्हारी मौत का ये वक्त मुकर्रर था यहाँ तो तुम खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाते और तुम्हें कोई वहाँ से बचा नहीं सकता। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह की ज़ात ने यहाँ ये बता दिया कि मैदाने जंग में कोई नहीं मरता, अपनी मौत गाह में वो खुद ब खुद पहुंच जाता है चाहे कहीं भी हो। और इस पे बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं कि लोग जहां उनकी मौत होती है वो किसी सबब की वजह से पहुंच जाते हैं, टिकट बुक किसी और का होता है, वो नहीं बैठता उसकी जगह दूसरा बैठता है, तो ट्रेन जो है उसको एक्सीडेंट हुआ वो मर गया। खबरें आती हैं ना अक्सर जब ऐसे हादसा होते हैं, फलां को जाना था वो ऐन वक्त पर रुक गया तो बच गया। जहां मौत है वहां इंसान जाएगा। हाँ ये सब कुछ क्यों हुआ, वली यब्तली अल्लाहुमा फी सुदूरिकुम, ताकि अल्लाह आजमाए वो चीज़ें जो तुम्हारे सीनों में है। ये क्या थी इनके सीनों में, हसद बुगज और ये निफाक जो था, जो मुसलमानों के खिलाफ ये बातें की हुई थी, अल्लाह ताला इसको खोलना चाहता था। वली युमख्खिस मा फी कुलूबिकुम, और साफ करना चाहता था उस चीज़ को जो तुम्हारे दिलों में थी, यानी जो खोट था, जो गंदगी थी, तो कोताहियाँ थी, उसको अल्लाह ताला पाक करना चाहता था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और अल्लाह ताला सीने के भेदों को खूब जानने वाला है, उसको खूब अच्छी तरह से पता है कि लोगों के दिलों में क्या है। यहाँ फिर वही बात दोहरा दी गई जिसका पीछे तस्करा हो गया कि मैदान जंग या जंग का मकसद क्या होता है, कि लोगों का निफाक भी खुल जाए, जो खोटे लोग हैं वो यहीं निकल जाएं, जैसे चावल पकाने से पहले ही आप दीमक लगे हुए चावल निकाल दें, या कोई दाल के अंदर अगर कंकर है या कोई ऐसी कीड़ा लगी हुई दाल है उसको निकाल दें, इसी तरह अल्लाह ताला मैदाने जंग में लोगों को निकाल के फेंक देता है। और साथ ही साथ सच्चे मुखलिस सहाबा के दिलों के अंदर जो ईमान होता है उसको फिर मजीद अल्लाह ताला खोल के पेश कर देता है और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है कि देखो इनको पाक करना है और दूसरों से खुद को पाक करना है, और अल्लाह ताला खूब जानता है। फिर आखिर में फरमाया, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, बेशक वो लोग जो तुमसे हट गए, पीछे हट गए, कब, यौमल तक़ल जमआन, जिस दिन दो फौजें आपस में लड़ी थी। तक़ा का लफ्ज़ वही है लिक़ा से, पीछे हम पढ़ चुके, यही लफ्ज़ पीछे आ चुका सूरह आल इमरान के बिल्कुल शुरू में, लिका मुलाकात को कहते हैं। जमान जमातुन का तस्निया है, यानी ड्यूल है ये, कि दो जमातें आपस में लड़ी, اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، بے شک شیطان نے ان کو بہکا دیا ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ اللہ نے درگزر فرمایا ان سے۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اس آیت میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری بات کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا کہ وہ لوگ جو ان مصیبتوں کے اندر خالص ہو گئے، سونا بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا، ان کا میل کچیل دور کر دیا، اور وہ لوگ جن کے اندر کھوٹ آ چکا تھا، جو بھاگ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت معاف کر دیا۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، اور وہ کیا کہ صحابہ کرام نے جو تھوڑی سی وقتی ایک بھگدڑ سہی یا ایک مشکل سہی، تو اس کی وجہ شیطان کا بہکانا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان میدان جنگ میں بھی جاتا ہے۔ ان نمست ذلّہ، یہ جو لفظ ہے نا استذلہم، یہ زا رور زا ہے نا، زا اور لام اور لام، ذلت القدم کہتے ہیں پھسلنے کو، زلالت یعنی پھسلنے کا معنی ہے اس میں، ڈگمگانے کا معنوں میں اردو میں اگر آپ اس کو لے لیں تو یہی مراد ہے۔ استذلہ کہتے ہیں کسی کو صحیح راستے سے بھگانے کی کوشش کرنا یا خواہش رکھنا۔ کس نے کس کو بہکایا؟ اشارہ پھر وہی ساتھیوں کی طرف ہے جو اس جگہ سے ہٹ گئے تھے، عبداللہ بن عبیر کے وہ ساتھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ شیطان کا پھسلانا۔ شیطان نے کیوں پھسلایا؟ بیباد ماں کا سبو، یا پھر ایک بہت ہی رقیق نقطہ ہے، بہت سافٹ نقطہ ہے۔ سارے کیوں نہ بہکے، کچھ کے قدم بہکے۔ پہلی بات ہے قدموں کا بہکنا شیطان کی وجہ سے تھا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کا قابو کیسے ہوا ان پہ، یعنی شیطان نے ان مخلص ساتھیوں پہ قابو کیسے پایا؟ اس کی وجہ ہے بیباد ماں کا سبو، ان کے کچھ برے کام، کوئی ایسے گناہ تھے جس کی وجہ سے شیطان کا قابو ہوا۔ کیا بات پتہ چلی؟ کہ انسان جتنے برے کام کرتا ہے نا، شیطان کا غلبہ اتنا اس کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم سورہ یوسف میں جا کے پڑھیں گے، وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء، کہ کیسے شیطان بندے کے اوپر مسلط ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کی طرح، یعنی لشکر گروپس جو ہوتے ہیں، ٹروپس جو ہوتے ہیں، اگر اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں تو دشمن پر قابو پا لیں گے۔ دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اور اگر اعمال برے ہوں گے تو دشمن یعنی شیطان ان پر قابو پا لے گا۔ کیا پتہ چلا؟ شیطان ہم پر غالب کب آتا ہے؟ جب ہم اعمال میں کمزور ہوتے ہیں۔ اور نیکی کی یہ خوبی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو پیدا کرتی ہے، جنم دیتی ہے، اور گناہ کی، برائی کی ایک شان ہے، اور وہ کیا کہ برائی میں سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چلا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جیسے ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ کسی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ نیک کام کی ایک نقد جزا یہ ہے کہ وہ دوسری نیکی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور برے عمل کی ایک نقد سزا یہ ہے کہ دوسرا گناہ ہے جس کے لیے پہلا گناہ راہ ہموار کر دیتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، صرف ایک دن آپ فجر کی نماز چھوڑ دیں جان کے، باقی چار بھی چھٹیں گی، ڈیلے ہوتی رہیں گی، اور جو نماز چھوڑتے ہیں آہستہ آہستہ پھر فخش آنے لگتا ہے۔ جیسے گاڑی چلاتے ہوئے آپ کا ایک مین کنٹرول ہوتا ہے نا، آپ کے ہاتھ میں گیئر ہے، آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، آپ اسٹیئرنگ کو کنٹرول میں رکھیں گے اور آپ کے ہاتھ میں آپ گاڑی چلائیں گے، اگر ایک دم کوئی آپ کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ لے کے گاڑی کو ادھر ادھر موڑ دے تو گاڑی الٹ سکتی ہے نا۔ اسی طرح زندگی کی شاہراہ میں جاتے ہوئے شیطان کا بہت زیادہ بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا اسٹیئرنگ لینا چاہتا ہے۔ ہم سیدھا جانا چاہ رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ مڑنا چاہ رہے ہیں نیکیوں کی طرف، ایک دم چھپٹا مارتا ہے، ایسے سوچے پیچھے بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں، اور چھپٹا لے کے فوراً ہمارے اسٹیئرنگ کو لیفٹ سائڈ پہ موڑ دیتا ہے، ہم جہنم میں یا گناہوں کے اندر پڑنے لگتے ہیں۔ اس کو گاڑی سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو اپنے قابو میں سے نکالنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں۔ جہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں شیطان کا غلبہ ہے۔ اب دیکھیں، جہاں شراب ہوگی نا وہاں جوا بھی ہوگا، جہاں جوا ہوگا وہاں زنا بھی ہوگا، جہاں زنا ہوگی وہاں قتل بھی ہوگا، یہ ایک چین ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک برائی دوسری برائی کا راستہ آسان کرتی ہے۔ وہ ایک بڑا بہودہ سا شعر بھی ہے نا کہ شراب کے ہر جام میں سے ایک جام سر اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے بھی پیو، یعنی نشہ کرتا ہے نا، جو ایک نشے کے بعد پھر دوسرا، ہر سگریٹ کے بعد اگلا سگریٹ اسی سے چلتا ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہی بنا کہ شیطان سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو نیکیوں کی چار دیواری میں لانا پڑے گا۔ अपने आप को जितना अल्लाह के कामों में लगाएंगे उतना सही रहेगा। फिर मैंने इसमें एक और चीज़ महसूस की है, ये जो सुबह शाम की दुआएं हैं, अगर हम ये छोड़ देते हैं ना, मैं अपना बता रही हूँ, आपका तो मुझे नहीं पता, अगर मैं ये ना पढ़ूँ ना तो मेरे दिल में उस दिन कसलबंदी होती है, बोझ होता है। सुबह शाम की दुआएं पढ़ना भी वाकई ऐसे लगता है कि शैतान के गलबे को इंसान से दूर कर देता है। लेकिन बहरहाल सहाबा से जो कुछ भी हुआ अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। इधर देखिए अल्लाह ताला बार बार सहाबा की सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि लियबतली यकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर रहा है। एक और तफसीर में भी एक और भी मफहूम दिया उन्होंने, कहते हैं कि बाज़ सहाबा जो वहाँ से निकले थे तो शैतान ने उनको बाज़ वो गुनाह याद करवा दिए थे जिनको लेकर वो अल्लाह के सामने नहीं जाना चाहते थे, यानी अल्लाह को मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस वक्त जिहाद से हट जाएं ताकि अपनी हालत दुरुस्त करके फिर दोबारा पसंदीदा हालत में जिहाद करें तो शहीद होकर अल्लाह से मिले। बहरहाल ये कौल है किसी का कि सहाबा को अपने गुनाहों का डर था कि अल्लाह से हम इन गुनाहों की हालत में ना मिलें, लेकिन बात बिल्कुल वाज़ है कि अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने जब माफ़ कर दिया तो किसी और को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर दिया सहाबा के ऊपर कोई बात कहने का। और वो क्या है कि तुम किसी के बारे में कुछ ना कहो। अब्दुल्ला बिन उमर के सामने किसी ने एक दफ़ा हज़रत उस्मान और बाद सहाबा कराम जो गज़वे उहद में थे उनके बारे में कुछ बात की, ताना दिया उनको कि देखो मैदान छोड़कर भाग गए थे। तो इस पे अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि जिस चीज़ की माफ़ी का अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया है फिर इस पर ताना करने का किसी और को क्या हक। ये सही बुखारी की रिवायत है, तो लिहाजा आज के दौर में कुछ लोग करते हैं। मैंने खुद किसी के बारे में सुना, अल्लाह ताला उनको और हमें भी हिदायत दे। सहाबा के बारे में बात कर रहे थे और साथ यही बातें कह रहे थे, देखा नबी को तन्हा छोड़ गए, मैदान जंग से भाग गए, माल के पीछे थे, नाउज़ुबिल्लाह ज़ुबानें कैसे खुलती हैं। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ क्या है कि सहाबा का जिक्र करें तो खैर के साथ करें, भलाई के बग़ैर उनका जिक्र ना करें। सहाबा का आपस में अगर कीना या बुग़्ज़ कोई था तो उसको पीछे डाल दें, कोई उस पर बात ना करें, इसलिए कि वो अल्लाह के चुने हुए लोग थे। और अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे। यहाँ पे लेसन पूरा हुआ, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.